राग विख्या नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय।
हम सभी लोग पिछले दिनों से संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता पर निरंतर विचार कैसे किया जाए इस बात पर विचार कर रहे हैं। हमने अपने जीवन में जो ज्ञान हासिल किया है उसे हम अपने अनुभव से परख करके भी देखते चले जाते हैं। वास्तव में वही ज्ञान श्रेष्ठ है जो कि हमारे अनुभव से स्वयं हमें प्राप्त होता है, पर क्या करें, हम अपने अनुभव से स्वयं लाभ नहीं ले पाते। तब जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने अपने अनुभव हमें दे करके और प्रेरणा दी है कि हम भी उनके जैसे ही जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हमारे सामने हैं। एक तो हमारे पूर्व में जो आचार्य भगवंत हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया है, जिन्होंने संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता को समझा है, उन्होंने भी हमें कुछ विचार दिए हैं, हम उन पर विचार करें। लेकिन उन पर विचार करते समय अपने जीवन के अनुभव भी उसमें जोड़ते चले जाएं। जैसे कोई हमें कोई बात बताता है तो हम तब उस पर विश्वास करते हैं जब उसे हम अपने जीवन में महसूस करके देख लेते हैं, अनुभव करके देख लेते हैं। कोई कहे कि पान आग गर्म होती है तो हम सहसा मान लें, यह तो ठीक है, पर हम अपने जीवन में यदि हम अनुभव कर ले उस चीज का, तो फिर वो चीज हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। अकेला ज्ञान हमें परिवर्तित नहीं करता, ज्ञान के साथ हमारा अनुभव हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। यह जान लेना कि आग जलाती है मुझे आग से बचने की प्रेरणा नहीं देती, लेकिन यदि मुझे आग में कभी जलने का अनुभव हो तो फिर मुझे आग से दूर रहना है, इस बात की प्रेरणा हमारे अंतरंग में स्वयं मिल जाती है। अनुप्रेक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो सिर्फ विचार नहीं है, वो अनुभूति से जुड़ा हुआ विचार है। मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार विचार करना अनुप्रेक्षा है। लेकिन बार बार विचार कोई कब करेगा, जब स्वयं अपने अनुभव में उस चीज को लाएगा या अपने अनुभव से उसे परखेगा। इसलिए परिभाषा बनाई गई कि नॉलेज कम विजुअलाइजेशन इज अनुप्रेक्षा। जब ज्ञान के साथ हमारी विजुअलाइजेशन मतलब हमारी अनुभूति भी जुड़ी होती है, जब हम रूबरू उस चीज को सामने जो हमने जाना उसे देखते हैं, तब फिर हमें लगता है कि वास्तविकता यही है। हमने पिछले दिनों संसार की चीजों को बहुत गौर से देखना शुरू किया है। हमें अब लगने लगा है कि संसार में जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वे सब नश्वर हैं। ये बात जुदी है कि कोई आज मिटती है, कोई कल मिटती है, कोई पूरे जीवन मिटती दिखाई नहीं पड़ती, परंतुतः वह भी मिट जाती है। यहां कुछ भी नहीं है जो कि शाश्वत हो, जो दिखाई पड़ता है वो। यह अवश्य है कि जो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, यह कि जो इन सब चीजों को देखने वाला है वह शाश्वत है। जो दृश्य जगत है वह नश्वर है, लेकिन जो दृष्टा है, जो भीतर बैठा हुआ चैतन्य है, वह तो शाश्वत है। यह विचार हमारे जीवन को क्या देता है? यही कि नश्वर चीजों के साथ व्यवहार नश्वर चीजों जैसा करो, और जो शाश्वत है उसके साथ व्यवहार शाश्वत जैसा करो। बस इतना ही ना, नश्वर चीजों को नश्वर मानकर के व्यवहार करो, उनको शाश्वत मानने का धोखा क्यों पालो, और उसके चलते अपनी उस चेतना जो कि शाश्वत है उसे अपवित्र होने से बचाओ, उसे पवित्र बनाए रखो, उसे हमेशा जो है उसकी तरफ ध्यान रखो, उसका पतन ना हो, उसका उत्थान हो, ये विचार बना रहे। हम तो जो नश्वर चीजें हैं उनको संभालने में लगे हैं, लेकिन जो अविनश्वर है उसे क्यों नहीं संभालते हैं? ऐसा हमारे भीतर विचार आना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। यहां हम चाहते हैं कि कोई हमारी रक्षा करे, ठीक है, हम अपने को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, हमें रक्षा करने वाला कोई चाहिए, तो हमने देख तो लिया, हम सोचते हैं कि हमारे पास धन पैसा होगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन वो धन पैसा भी जब नहीं रहता है तो तकलीफ पहुंचाता है, जब आ जाता है तो उसकी सुरक्षा और कम नहीं पड़ती है, वो हमारी का सुरक्षा करेगा। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हम आराम से बिना ताला लगाए और दरवाजे खुले और आराम से सो जाते हैं, फिर बाद में चार पैसे आ जाए तो दरवाजा बंद करो, उन चार पैसों की नौकरी क्या कहेंगे उसको, उन चार की रखवाली करो। कई बार अपने को लगता है कि धन हमें सुरक्षित कर रहा है, लेकिन हम देखें अगर तो धन की सुरक्षा में हम जो है उसके चौकीदार बने बैठे रहते, तो ये तो धन वैभव की तासीर मालूम पड़ गई कि यहां कहीं शरण नहीं है। जहां जहां मैं संसार में शरण लेता हूं वे सब भी कहीं ना कहीं शरण पाने के लिए और मजबूर है, तब फिर मुझे किसकी शरण लेनी चाहिए और किसको अशरण मानना चाहिए? इस संसार में कहीं कोई शरण नहीं है, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखना है, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता है, रक्षा कौन कर सकता है, मेरा अपना धर्म। बस इतना ही मेरे लिए ध्यान बना रहे, तमाम संसार के अशरण होने के बावजूद भी धर्म है जिसकी मुझे शरण है और धर्मात्मा की शरण है। फिर हमने विचार किया कि संसार में तो हमारा जन्म मरण हमेशा होता रहता है, और जन्म मरण का नाम ही संसार है। मैं जन्म के साथ सोचता हूं कि सुख अर्जित करूंगा इस संसार में, लेकिन देखता हूं कि जब तक मेरा मरण नहीं होता तब तक भी यहां जो जो सुख के कारण है उन सबसे मुझे दुखी मिलता है। अरे तब तो फिर ये मेरा भ्रम कि इस संसार में सुख है, नहीं, इस संसार में सुख नहीं है। मुझे इस संसार में सुख पाने के लिए प्रयास अवश्य करना आवश्यक है। इस संसार में कोई दुखी है धन संपत्ति ज्यादा होने से? There are two tragedies in the life। व्यक्ति के जीवन में दो दुखद घटनाएं घटित होती हैं, एक वो जब उसे उसकी चाही हुई चीज नहीं मिलती, एक वो घटना भी दुर्घटना है जब उसे उसकी चाही चीज मिल जाती है, तब उसका चार्म खत्म हो जाता। कल तक जिस चीज को चाहा था वो नहीं मिलती थी तब एक पीड़ा थी, और जिस चीज को चाहा वो मिल गई तो अब किसी और चीज को चाहने की पीड़ा शुरू हो गई, क्योंकि जो चाहा था वो तो मिल गया, उसमें कोई सुख नजर नहीं आता। जब तक नहीं मिला था तब तक सुख नजर आ रहा था, मिलने के बाद जो दूर है वो सोना मालूम पड़ता है, लेकिन वही निकट आने पर मिट्टी मालूम पड़ने लगता है। ये संसार के सुख की तासीर है। यहां जो सुख मिलता है वो अपने साथ दुख को लेकर के आता है। ठीक है, मैंने समझ लिया यहां इस संसार में, इसलिए अब मुझे कोई सुख आएगा तो मैं ज्यादा हर्षित नहीं होऊंगा और दुख आएगा तो मैं विषाद नहीं करूंगा। मैं सुख और दुख संसार के दोनों के बीच और साम्य भाव रखने की कोशिश करूंगा, ये मैंने विचार बना लिया है। संसार अनुप्रेक्षा यह विचार हमें देती है। इस संसार से बचने का रास्ता अगर कोई है तो वो यही है कि संसार के सुख में एक्साइट नहीं होना और संसार के दुखों में डिप्रेस होकर के हार करके नहीं बैठ जाना, बल्कि दोनों को शांति से सहन करके आगे बढ़ जाना, तो संसार से पार हो जाएंगे। और फिर हमने देखा कि जो कुछ भी हम यहां करते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो सबके लिए कर रहे हैं, हमने अपने परिवार के लिए कितना कितना कुछ करा है, उस सब का फल हमारे परिवारजन भी भोगे। अगर हमने परिवार वाले लोगों के लिए और बेईमानी करके पैसा कमाया है तो वे हमारी उस बेईमानी में हिस्सेदारी करें। लेकिन हम देखते हैं कि हम यहां पर सबके लिए जो भी पाप करते हैं उसका फल अंततः हमें ही भोगना पड़ता है, कोई हमारे किए पाप का फल भोगने तैयार ही नहीं होता और संभव ही नहीं है। हम जो करें उसका फल दूसरा भोगे ऐसा संभव ही नहीं होता। तब फिर तो ये हुआ कि जरा संभल के करें, हम भला करें तो भी हमारा ही भला होता है और बुरा करें तो भी हमारा ही बुरा होता है, तो हम जरा होशियारी से करें। अब ये एकत्व अनुप्रेक्षा है और क्या है, मैं यहां अपने सुख दुख का भोगता स्वयं हूं, मैं जो शुभ करता हूं मैं जो अशुभ करता हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कल तक तो मैं यही सोचता था कि जो भला करता हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो बुरा करता हूं उसकी जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि मैंने सबके लिए किया। नहीं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फल्यम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम। स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, स्वयं किए हुए कर्म अगर दूसरे को फल देने लगे और दूसरे के किए गए कर्मों का फल हमें भोगना पड़े तब तो फिर हमारे किए कर्म ही व्यर्थ हो गए। नहीं, हमारे किए कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता, दूसरे के वो भोगेगा, तब क्या होता है, दूसरा अगर कुछ गड़बड़ करता है तो हम फिर एक्साइट नहीं होंगे जल्दी से, ठीक है भैया तुम्हारी इंडिविजुअलिटी अलग है हमारी अपनी अलग है, तुम जो करोगे वो तुम भोगोगे, हम जो करेंगे वो हम भोगेंगे, पर हम जब भी चाहेंगे तुम्हारा भला चाहेंगे, बस इतना ही। एकत्व अनुप्रेक्षा और अन्यत्व, इस शरीर और चेतना में कोई अंतर नजर ही नहीं आता, यहां तक कि मैं चीजों, ये पेन तो दिखाई पड़ता है कि मेरे से पृथक है, ये मकान दिखाई पड़ता मेरे से पृथक है, यहां तक कि ये शरीर जो कि दिखाई नहीं पड़ता कि मेरे से पृथक है, ये भी मेरे से अलग है। इस तरह डिसयूनियन, इस तरह दो अलग अलग चीजों में जो एक होने का भ्रम है उसे तोड़ देने का नाम, यानी ब्रह्म और माया के बीच की रेखा पहचान लेने का नाम अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। यह ब्रह्म है और यह सब माया है, माया है तो क्या करूं, इल्यूजन है तो क्या करूं, बस इसे माया ही मान करके इसे ब्रह्म ना मान लूं, वरना आज तक तो इसे ही सब कुछ ब्रह्म मानता हूं। ब्रह्म तो मेरे भीतर बैठा हुआ है, वो जो मेरी चेतना है, वो जो मेरी विशुद्ध आत्मस्वरूप की स्थिति है, वो है ब्रह्म। बाकी सब जो कुछ भी यहां विकारी दिखाई पड़ता है, वैभाविक प्रणमन दिखाई पड़ता है, वो सब माया है। अगर ये इस तरह अनुपेक्षा हमें यही सिखाती है, दो अलग अलग चीजें जिनके एक होने का भ्रम हो गया है उस भ्रम को तोड़ देती है, या कि डिकलराइजेशन कर देती है। जैसे रंगरेज के यहां सफेद कपड़ा ले जाओ, चाहे जिस रंग का ले जाओ, चाहे जिस रंग का बनवा के ले आओ, लेकिन ओरिजिनल कलर क्या है ये पता ही नहीं लगता। रंगरेज तो काम यही करता है कि वो आप जिस रंग का चाहें वैसा, या कि चश्मे वाले के यहां पर विभिन्न प्रकार के कांच के चश्मे मिलते हैं, आप जो चाहें जिस कलर का चाहें संसार वैसा ही दिखाई पड़ने लगेगा। अनुप्रेक्षा क्या करती है, सारे चश्मे उतार देती है और डिकलराइजेशन कर देती है कि जितने रंग चढ़े थे दुनिया के सब रंग उतर गए, अपना जो स्वयं का रंग है, अपना जो स्वयं का चेहरा है वो दिखाई देने लगे, बस ये काम अनुप्रेक्षा का है। हमने पिछले दिनों यहां तक अपनी यात्रा कर ली थी कि अब हम संसार के रंग अपने ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, जबकि संसार के रंग इतने गहरे चढ़ जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारा अपना ओरिजिनल स्वरूप क्या है। हम इतने चेहरे लगा के जीते हैं, जिसके सामने पहुंचते हैं उसके सामने एक अलग चेहरा लगाना पड़ता है, देख लो आप, नहीं तो काम ही नहीं चलता। दुकान पर है तो हमारा एक अलग चेहरा है, मंदिर में है तो बिल्कुल ही अलग, आप पहचान नहीं सकते कि ये आदमी था वो। अरे इतना प्यारा व्यक्ति मंदिर में और ये दुकान पर, कुछ अलग ही है। और अगर बेटा अगर अपने पिता को दुकान पर देखे और मंदिर में देखे और घर में आकर के देखे तो तीसरे ही दिखाई पड़े। ऐसे हम चेहरे लगा के जीने के आदि हो गए हैं, कोई हर्जा नहीं है, ये करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच भी मेरा अपना कोई चेहरा ओरिजिनल है ये ना भूले, बस इतना ही ध्यान रहे और कुछ नहीं। कभी थोड़ा सा 5 मिनट का वक्त तो मिले अपने जीवन में कि जब हमें अपना स्वयं का चेहरा दिखाई पड़े। अनुप्रेक्षा यही करती है, बार बार चिंतन की प्रक्रिया यही हमें सलाह देती है कि ये सारे जितने चेहरे लगा रखे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारा वास्तविक चेहरा भी तो देखो, इन चेहरों में तुम अपना वास्तविक चेहरा ना भूल जाओ। जैसे बच्चों को डरवाने के लिए हम लोग बचपन में क्या करते थे, वो बने बनाए चेहरे आते वो लगा लेते थे, बच्चे डर जाते थे कि अरे, फिर उनको अपन उतार करके हंसवा देते थे कि अरे ये तो हमने वैसे ही लगा लिया था तुम्हें डरवाने के लिए। जैसे कि शेर वगैरह निकलते हैं तो वो व्यक्ति ही रहते हैं, पर शेर का चेहरा लगा लेते, पूंछ लगा लेते हैं, थोड़ी देर को वैसे शेर जैसा करने लगते हैं, पर अगर वे भूल जाएं कि वे मनुष्य हैं तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं भूलते वो शेर का चेहरा लगाने के बाद भी याद रहता है कि मैं मनुष्य हूं। ठीक इसी तरह हम अपना वास्तविक स्वरूप, इस माया के बीच में भी हमें उस ब्रह्म का स्मरण बना रहे, बस इतना ही ध्यान, ये अनुप्रेक्षा करते। और अब जरा और आगे बढ़ते हैं, ये जो शरीर है ये तो बहुत गंदा दिखाई पड़ता है, मैं इसे साफ सुथरा बनाने की बहुत कोशिश करता हूं। अब इसके बारे में जरा विचार कर लेना चाहिए, अब ये गंदा है इसके बारे में सब लोग कहते हैं कि देह परस्ते हो तपावन निस्तिन मलझारी, कीकस वसादिते मैली नवद्वार बहे घिनकारी, असी देह करें कि मियारी। हाँ, ऐसी बहुत सी बातें शरीर के बारे में कही गई हैं। हम जब शरीर के बारे में विचार करते हैं तो ये बड़ा गंदा मालूम पड़ता, क्या करें, ये गंदा है तो इसको धोएं, या तो एक ये प्रक्रिया हो सकती कि इसको साफ सुथरा बनाएं। लेकिन साफ सुथरा बनाते हैं तो सुबह बनाते हैं, घंटे भर में फिर गंदा हो जाता, बड़ी दिक्कत है। तो क्या करें, इसको उठा के फेंक दें, गंदा है ये, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, तो क्या करें फिर इस शरीर के साथ में। कहते शरीर के साथ अपना व्यवहार बदल लो, बस इतना ही है, इस शरीर में रह करके शरीर के साथ रहना हम सीख ले गए बस। अभी तो हम स्वयं शरीर रूप हो जाते हैं, इतना भ्रम तो हमें तोड़ देना चाहिए कि हम शरीर अकेले नहीं हैं। दूसरा ये कि शरीर मलिन है और मुझे इसे पवित्र बनाना है, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि इसे पवित्र बनाने की चेष्टाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं। कोयले को कितना ही धो सफेद होगा क्या, कोयला तो कोयला है, उसको धोने से वो उजला नहीं निकलता है। इसी तरह इस शरीर को है तो क्या करें फिर, तब दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूरख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप न जाको विरचन योग सही है, यह नर तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। हो गई बात, इतने में देखो आप कितने आसानी से हमें रास्ता दे दिया है कि शरीर के अपवित्र होने का ध्यान रखना, इसे पवित्र होने का भ्रमत पालना, और ये अपवित्र है इसलिए इसमें रचना पचना नहीं, पर इसको
फीकने के लिए और घृणा करने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं लिखा कहीं भी। हम सब लोग इस अनुप्रेक्षा को पढ़ते समय शरीर से घृणा सीखते हैं। घृणा सीखना नहीं सिखाया है शरीर से, कहीं नहीं लिखा कि शरीर से घृणा करो। ये लिखा है कि राग न करो, लेकिन घृणा करो नहीं। राचन योग स्वरूप न जाको विरचन योग सही है, ये कह रहे हैं। इस शरीर के अपवित्रता का विचार करके इससे घृणा करो ये नहीं कह रहे हैं, ना इसको फेंक दो इस ऐसा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस शरीर में रचो पचो मत, इस शरीर में आशक्त मत हो, क्योंकि ये जितना तुम्हें आशक्त करने योग्य दिखाई पड़ता है वैसा है नहीं। चाम लपेटी ऊपर सो है, ऊपर ये चमड़ी की वजह से सुंदर दिखाई पड़ता है, और चमड़ी जरा सी निकाल के भीतर झांक के देखो तो फिर अपना ही शरीर अपने को अच्छा नहीं जान पड़ेगा। ऐसा तो इसका स्वभाव है, ऐसा जान करके इसमें आशक्त नहीं हो, और आशक्त नहीं हो तो क्या करें। यह तन पाए महातप कीजे जा में सार। ये शरीर मिला है तो सौभाग्य समझो, मनुष्य का शरीर मिलना सौभाग्य। हाँ, त्रियंश का मिला होता तो दुर्भाग्य मानना पड़ता, एक इंद्री दो इंद्री का कीड़ों का शरीर मिला होता तो दुर्भाग्य मानना पड़ता, देवों का मिला होता तो भी दुर्भाग्य मानना पड़ता, ध्यान रखना। क्योंकि देवों के शरीर के साथ बड़ी मुश्किल है कि 15 दिन के बाद अगर उनको भोजन की बाधा होना है तो होगी, और अपने आप उनके कंठ में से अमृत झर जाएगा और वे उपवास नहीं कर सकते, वे चाहें भी तो भी, लेकिन तपस्या नहीं कर सकते देव अपने शरीर से। है बहुत बढ़िया, निरोगी शरीर मिलता है, कोई रोग शोक नहीं होता, लेकिन तपस्या करने लायक शरीर नहीं, संयम धारण करने लायक शरीर नहीं मिला। मनुष्य का शरीर गंदा होने के बावजूद भी, अपवित्र होने के बावजूद भी आत्मा की पवित्रता में कारण बन सकता है। बस इतना ही हमें विचार करना है कि अरे ये शरीर जो अपवित्र है क्या इसको मैं किसी काम में ले सकता हूं। तो एक काम तो इसका यह है कि भोग विलास कर लूं इससे, लेकिन इसके बाद भी ये गंदा ही हो जाता है। भोग विलास करने के बाद धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होकर के नष्ट हो जाता है ये। तो तब दूसरा उपाय है कि मैं इसके द्वारा तपस्या करूं। काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे। जैसे कि बाणर अपने हाथ में लग जाए गन्ना की और चूसो तो मीठा कुछ लगता नहीं, दांत और टूट जाते सब, बहुत कड़ा रहता वो, और अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और बोदो तो नया गन्ना निकल आता है, खूब रस पियो। फले अनंत जु, वही गन्ना जो है बहुत सारे रसवान गन्ने दे सकता, यही देह है। अगर धर्म के क्षेत्र में गन्ने की तरह जैसे बो दी जाए, इसको धर्म में लगा दिया है तो अनंत फल देती, अर्थात हमारे उस अनंत आत्म स्वरूप अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य और सुख को प्राप्त कराने में यही कारण बन जाए। तो क्या अपन इसको इस शरीर से क्या विचार करें। शरीर के बारे में इतने ही सा विचार अपन लोग रोज कर लेते हैं, 12 भावना पढ़ते हैं, शरीर अपवित्र है भैया, बहुत असुचि है, तो क्या करें, असुचि है सो घृणा करें कि ऐसे ही डारे रहे। अपनों ही शरीर अगर एक आध दो दिन अन्य सपरो तो अपने को खराब लगन लग, दूसरे को तो ठीक ही है, बदबू आने लगेगी। सो जय सलाह नहीं दे रहे हम के अपवित्र है सो अपवित्र ही बनो रहे दो, नहीं जितना आवश्यक है उसकी उतनी स्वच्छता तो रखो, लेकिन इसको स्वच्छ बनाने में अपने जीवन के अनमोल क्षण बर्बाद न करो। इसके ही श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, इस शरीर के श्रृंगार में। आजकल ये हो रहा है, अभी हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा है कि लोग अपने शरीर के प्रति इतने चिंतित हो गए हैं कि अगर थोड़ा स्थूल शरीर हो जाता है तो वे उसे दुबला पतला करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, क्या उसको सर्जरी करवा करके और थिन बना रहे हैं। अगर उनका शरीर स्थूल है तो सर्जरी होने लगी, बताइएगा। पढ़ करके दंग रह गया मैं कि शरीर के प्रति हम कितने अधिक जो ब्यूटीफॉल रहे, घंटों दो दो घंटे तक अपने शरीर के प्रति पूरी चिंता उसकी रख रहे हैं। आत्मा कितनी भी मलिन होती जाए, इसकी चिंता जो नहीं करता, और शरीर मलिन है इसके बाद भी उसे पवित्र बनाने की चेष्टा करता है, यही तो संसार बढ़ाने का उपाय है भैया। और क्या है इसमें बताइए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शरीर को नहलाना धुलाना कोई खराब चीज नहीं है, नहला धुला करके स्वच्छ साफ सुथरा, और चलो जल्दी से अपन पूजा पाठ करेंगे, चलो भैया जल्दी से धर्म ध्यान कर लेंगे, क्योंकि धर्म ध्यान के लायक जो पवित्रता है वो आवश्यक है। लेकिन 24 घंटे इसी के लिए, इसी की सेवा में निकल जाएं और मेरे पास अपने आत्मा की पवित्रता के लिए समय ना मिले, तो फिर ऐसी अपवित्र देह व्यर्थ ही है, फिर तो इसका मिलना हमारे लिए व्यर्थ हो गया, जबकि ये देह हमारे लिए अपने आत्मा की पवित्रता के लिए मिली थी, इसलिए अपवित्र है ये। हम तो यही सोचते हैं ये अपवित्र इसलिए मिली है कि इससे हम इसमें रचें पचें ने इसकी अपवित्रता को जान ले में, और आत्मा में जो पवित्रता है उसकी तरफ ध्यान रखें। गुणों से प्रीति होना और शरीर से प्रीति नहीं होना, लेकिन घृणा होना ऐसा नहीं कह रहा हूं, गुणों से प्रीति होना और शरीर उसमें माध्यम है, बस इतना। जैसे कि मां अपने गंदे बेटे को भी बिना किसी ग्लानि के नहलाती धुलाती है, गंदगी साफ कर देती, उस समय क्या देखती वो शरीर देखती, गंदगी देखती क्या? ना, मेरा बेटा है, उसके गुण दिखाई पड़ रहे हैं, शरीर की अपवित्रता दिखाई नहीं पड़ रही। ऐसे ही तो भैया अपन को कर लेना चाहिए सबके प्रति। कोई अपने परिवारजन मान लो अस्वस्थ हो जाए, नाक बह रही है और मलमूत्र की बाधा वहीं हो गई है बिस्तर में ही, फिर भी अपन उनसे घृणा करते हैं क्या? घृणा नहीं करते, बल्कि उनसे हमारा प्रेम है तो उन्हें उस घृणा से मुक्त कर देते हैं। बस ऐसे ही अगर अपनी आत्मा से प्रेम है तो ये शरीर कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, मुझे अब अपने आत्मा की पवित्रता बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। होगा अपवित्र शरीर रहा आवे, इस अपवित्र शरीर के भीतर भी मुझे उस आत्मा की पवित्रता को आगे बढ़ाना। जैसे कि मंदिर में देवता विराजमान होते हैं तो हम क्या करते हैं, मंदिर को झाड़ते पहुंचते हैं, उससे स्वच्छ साफ सुथरा बनाते हैं। किस भावना से? यहां देवता बैठे हैं भैया, शरीर मंदिर है, उसमें अपनी आत्मा देवता के समान बैठी है, ऐसा मान के शरीर का के साथ अगर हम व्यवहार करें, मंदिर मान के, भोग की सामग्री है ऐसा मान के करेंगे तो ब्यूटी पार्लर में बैठे दिखाई पड़ेंगे, और अगर ये सामग्री मेरे कल्याण की है तो फिर मंदिर में बैठे दिखाई पड़ेंगे नहा धोकर के। इतना अंतर है, अब देख लो कैसा व्यवहार, व्यवहार से मालूम पड़ जाता, अकेली बातों से मालूम नहीं पड़त। बातों में तो अपन कह सकत कि हमारा ज्यादा शरीर से अनुराग नहीं है, नहीं है तो काय बैठे घंटा भर सफर रहे, सवेरे से सूखा दो तीन घंटा में सफर पाए, अरे एक लोटा दो लोटा से चार लोटा से आदमी सफरता, आपको जो है अब शावर चाहिए, शावर के नीचे स्नान कर रहे हैं, जल का एक जीवों की हिंसा अलग हो रही और अपने शरीर के प्रति आसक्ति अलग हो रही, और अपने जो आत्मा के कल्याण करने का समय था वो निरंतर गुजरता चला जा रहा है, इतनी हानि हो रही। एक क्षण भी अगर हमने बर्बाद किया है तो समझना कि वो हमारे चेतना को मलिन करके चला गया है, अगर इन सब चीजों में। और इसलिए नहा रहे हैं कि जल्दी से चलो नहा धो करके पूजा करनी, तो वो नहाने धोने का समय भी पूजा ही का निकल गया समझ लो। हाँ, और मंदिर में बैठे बैठे सोच रहे कि जल्दी चलो, आज तो थोड़ी सुनी है कि जी ऐसी थोड़ी जी बाल लेते कि निकरवा दें तो सुंदर लगे, सोते से चल रहे अपन सोते ही चल सीधे, अब घरे घरे काहे को जी इतने से ब्यूटी पार्लर हो जैन जी थोड़े अच्छे बनवा ले, सुंदर लगेगा। जब टिकली कैसे लगाना चाहिए जिससे कि सुंदर दिखे चेहरा, और उसके बाद दाढ़ी बनवाने के बाद कौन सी क्रीम लगाना चाहिए जिससे जरा अच्छा दिखाई पड़े, ये सब चिंताएं हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं आपसे, अब बुरा नहीं मानना आप। हाँ, मतलब ऐसा कि भाई ऐसा अपन करते हैं, लेकिन हमें अब क्या करना है, सवाल ये है। साफ सुथरा होने का निषेध नहीं है, लेकिन इतना अधिक समय इसी चीज में लगाना कि हमारे अपने कल्याण का समय ना बचे, भैया ये ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात है, और कोई इसमें विशेष बात समझने की नहीं है। शरीर के प्रति अगर हमारी आसक्ति कमती होती चली जाएगी, तो शरीर का हम सदुपयोग करेंगे और शरीर की अपवित्रता से बच करके आत्मा की पवित्रता को प्राप्त कर लेंगे। आज हमने इतनी ही बात सीखी। एक बार द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत से लोग घायल हुए, उस समय एडवर्ड हुआ करते थे, मुझे नाम भूल जाता हूँ, थोड़ी गलती कह दी मैंने पिछले इतवार को भी, मैं थोड़ा गलत कह गया, मैं सोच रहा था मैंने सही कहा, अब मैं विदेश के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता जितना पढ़ता हूँ, उसमें भूल गया, मैंने बर्लिन जापान में कह दिया, मैं अपनी गलती सुधारता हूँ, बर्लिन तो जर्मनी में है, मैंने उस दिन, और यही सोच रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जापान कह रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जर्मनी कह रहा हूँ लेकिन मुँह से निकल रहा है जापान, ऐसा हो गया, तो उसको सुधार लीजिएगा। ऐसे ही इसको भी कि द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय कौन थे मैं भूल भी गया हूं, तो उसको ना मान में ज्यादा इसलिए नहीं, अपन तो मुख्य घटना क्या हुई, 36 लोग घायल हुए उसमें, तो वो जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उनसे मिलने की मैंने कोशिश की, लोग जबकि उनसे मिलने नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि विश्व युद्ध में और जो जो अपन देखते ना कि अपन बड़े लोगों को वही बताते हैं जो अच्छा होता है, खराब नहीं दिखाना चाहते कि क्या कुछ हुआ है, नहीं ये हो गया हमारी जीत हो गई हमारा ये हो गया, पर वो कह रहे थे कि जो 36 लोग बहुत बहुत घायल हो गए जिनके मरना सन्न है उनको मैं देखना चाहता हूं, तो लोग टाल रहे थे, जैसे तैसे करके उनकी जिद से 29 लोगों को तो दिखा दिया लेकिन 7 की सूरत तो देखने लायक नहीं थी, आदमी विरक्त हो जाए अगर देख ले तो, इनने जिद पकड़ ली कि हम तो सबको देखेंगे, जिन 29 लोगों को देखा था वो 29 लोग भी शायद इतने घायल थे कि देखने लायक नहीं थे, पर फिर भी ये उनके पास गए, वो लोग सबकी आंखें दुरुस्त थी इसलिए उनने जब इनको आते राष्ट्रपति को आते देखा तो गदगद हो गए, उनके उतने ही अकेले आने से जबकि वो बोल नहीं सकते हैं इनकी बात सुन नहीं सकते, सिर्फ आंखें उनकी हैं बाकी कान वान सब पैक हैं, सिर्फ आंखों से देख करके उनके आंसू गिर गए, राष्ट्रपति बहुत संतुष्ट हुए कि मैंने इनके लिए कुछ करा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उन क्षणों में शरीर अकेले को देखा होता तो शायद हम उसके भीतर की चेतना नहीं देख पाते, वे जिद कर रहे थे कि मैं उनसे मिलना चाह रहा हूं। 7 लोग और बच्चे जिनमें से 6 लोगों तक तो लोग ले गए, उन्होंने कहा अब नहीं ले जाऊंगा सातवें के पास, उन्होंने जिद ठान ली कि मैं जाऊंगा उसके पास। सातवें की स्थिति यह थी कि उसकी दोनों आंखें चली गई थी और सारा शरीर इतना विकृत हो गया था कि देखने लायक बस मांस का एक लौथड़ा था समझ लो जो रखा हुआ था, लेकिन उसके भीतर भी चेतना थी, स्पंदन था, बदबू आ रही है नहीं जा सकते अंदर, लेकिन ये अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के अब ना वो हमें देख सकता है ना आवाज सुन सकता है लेकिन स्पर्श तो महसूस कर सकता है, जिसके स्पर्श करने से बदबू आएगी उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, आश्चर्य होता है लोगों को। मुझे ये घटना पढ़कर के आश्चर्य हुआ था, देखो अपने परिवार जन के प्रति तो अपने मन में मोह रहता है, सो कितने भी विकृत हो जाएं तब भी हमारा है ऐसा भाव रहता, लेकिन एक सैनिक जिससे कोई संबंध नहीं है, एक राष्ट्रपति उसके सिर पे हाथ रखता है, इसके मायने क्या है, वहां पर शरीर देखा जा रहा है या कि चेतना देखी जा रही। बस भैया अपन भी इतना ही सीख लें कि कभी कहीं भी दृष्टि डालें तो सबसे पहले चेतना दिखाई पड़े, शरीर दिखाई ना पड़े, शरीर से प्रेम कम हो आत्म प्रेम बढ़ता जाए, परस्पर एक दूसरे के बीच भी अगर ऐसा हो जाए तो समझना अशुचि अनुप्रेक्षा हमारे जीवन में आ गई, वरना आज चेतना से प्रेम कम है शरीर से प्रेम ज्यादा है, ये अपन रोज देखते हैं इस चीज को, नहीं देखते हैं, अपनी दृष्टि विकृत क्यों हो जाती है, अगर आत्म प्रेम हो तो विकृत नहीं होगी और अगर शरीर से प्रेम हो तो दृष्टि में विकार आने में देर नहीं लगता है। बताइएगा, शरीर विकृत भी है और हमारी दृष्टि को भी विकृत कर देता है, लेकिन उसी शरीर में बैठे हुए आत्मा पर दृष्टि हो तो हमारी दृष्टि भी निर्मल हो जाती है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। अब सोच ले अपन कि अपन को क्या करना है, अपने आत्मा को निर्मल बनाना है या शरीर की अशुद्धता में ही और रचे पचे रहना है, दोनों में से एक को चुनना हो तो अपने आत्मा की निर्मलता चुनना, यही विचार श्रेष्ठ है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर कि आज मुझे थोड़ी देर हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, मैं 8:30 पे नहीं आ पाया आज मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि। के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रचि पचि करता तिल निद्रा में सोता हो,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में
बंदे ये शुभ काम। भक्ति बढ़ा गुरु